दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ। यहाँ अल्लाह ताला की तख्लीक का जिक्र है और मुद्दत तख्लीक का जिक्र है कि अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन को पैदा किया। हालांकि हम कुरान में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला तो कहते हैं कुन हो जा फयकून, तो वो हो जाती है। तो यहाँ आसमान और जमीन को 6 दिनों में क्यों पैदा किया? उलमा लिखते हैं कि 6 दिन में इसलिए कि इंसान को निजाम आलम के चलाने में तदरीज यानी स्टेप बाय स्टेप और पुख्ता कारी की तालीम दी जा सके। और प्यारे नबी की एक हदीस का मफहूम है गौर व फिक्र, वकार और तदरीज के साथ काम करना अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। अल्लाह ताला फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुए। अब ये तख्ते सल्तनत या अर्श, इसकी क्या कैफियत है? जिसको अल्लाह ने मुबहम रखा है, इसे आप भी मुबहम रखें। इमाम मालिक कहते हैं कि इस्तवा तो पता है यानी ये मालूम है, लेकिन उसकी कैफियत नहीं मालूम और उसके बारे में सवाल करना बिदअत है। ये आयात मुतशाबहात में से है, इस पे हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस हम इस पर ईमान लाते हैं। जो रात को दिन पर ढांक देता है, फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है। आप देखिए अल्लाह की इस बनाई हुई कायनात में कितनी हरकत है। खून की गर्दिश में भी आप देखें हरकत है, जमीन भी घूम रही है, सितारे और सैयारे भी, दिन और रात का आना जाना। इसका मतलब है कि अल्लाह के इस कारखाने में बेकार लोगों की जगह नहीं है। मेहनत करना, कोशिश करना, हरकत करना, ये सारी चीजें इंसान को कायनात सिखाती है। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं ना, वश्शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिह, सूरज और चांद और तारे अल्लाह ने पैदा किए, सब उसके फरमान के ताबे हैं। आप सोचे सारी कायनात अल्लाह की है, सब अल्लाह की फरमा बरदारी कर रही है, तो मैं क्या करूं? मुझे भी चाहिए मैं अल्लाह की बन जाऊं, मेरा फायदा इसी में है। जिसकी सारी कायनात है मैं भी उसी की बन जाऊं। खबरदार रहो, उसी की खल्क है और उसी का अमर। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक परवरदिगार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ अल्लाह ताला ने दुआ का कहा है, मांगो अपने रब से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, खामोशी से चुपके चुपके दिल ही दिल में पुकारो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सबके लिए नफा बख्श है, लिहाजा अल्लाह के बंदो दुआ जरूर किया करो। यानी जो आफतें हम पर उतरी हुई हैं, नाजिल हो चुकी हुई हैं, उनसे बचने की सूरत भी यही है कि अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगे, और जो आफतें नाजिल नहीं हुई उनसे बचने की सूरत भी अल्लाह से दुआ ही है, अल्लाह की तरफ रुजू करना ही है। और हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला और सखी है, जब बंदा उसके हजूर हाथ उठाता है तो इन्हें खाली लौटाते हुए उसे शर्म आती है। इतना हमारा प्यारा रब है, हम बस हाथ उठाने की देर है, मांगने की देर है, अल्लाह जरूर दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जमीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इसलाह हो चुकी है, और खुदा ही को पुकारो खौफ के साथ और तमा के साथ, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक किरदार लोगों से करीब है, मोहसिनीन के करीब है। जो काम करते हैं दिल से करते हैं, नेकी करते हैं शौक से करते हैं, और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वो पानी से लदे हुए बादल उठाती हैं तो इन्हें किसी मुर्दा सर जमीन की तरफ हरकत देता है, और वहां मी बरसा के उसी मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो इसी तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक लो। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है उससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इस तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्र गुजार होने वाले हैं। अल्लाह हमें शुक्र गुजारों में से बना दे। यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी हवाओं का जिक्र किया है जो उसकी रहमत की खुशखबरियां लिए हुए जाती हैं, पानी के लदे हुए बादल उठाती हैं और मुर्दा सरजमीन पर जाकर बरसती हैं, और फिर वो अगर जमीन जरखेज होती है तो उसमें से तरह तरह के फल फूल निकलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हवाएं बन जाइए, इस पानी को जो अल्लाह की वही है, अल्लाह का कलाम है, इसको उठाइए और जहां मुर्दा सरजमीन, जहां जहालत है, जहां शिर्क है, जहां अमाल की खराबियां हैं, जहां लोग बेखबर हैं, जिन्हें पता नहीं है, उनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी तक इल्म नहीं पहुंचा, उनकी हदायत का जरिया मैं और आप बन जाएं, तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी। इस पानी को, इस बारिश को बरसाएं उन लोगों पर, उनके जमीर जो मुर्दा हो चुके हैं, हो सकता है ये वही का पानी उनके दिलों पर पड़े और उनकी अंदर की जो जरखेजी है और सलाहियतें हैं और सालेहियत है वो बाहर निकल आए, और अल्लाह इसको मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बना दे और खुशखबरियां दें, लोगों को रब से करीब करें, अल्लाह की रहमत से करीब करें, अल्लाह के प्यार का, अल्लाह की मोहब्बत का यकीन दिलाएं, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो मुझे इल्म और हदायत देकर भेजा है, उसकी तमसील ये है कि किसी खित्ते जमीन पर बारिश हो तो जो टुकड़ा जरखेज होता है वो पानी को कबूल कर लेता है और खूब सब्जा उगाता है, और इसी तरह कोई टुकड़ा ऐसा होता है जो नबातात को तो नहीं उगाता लेकिन पानी को रोक लेता है, तो अल्लाह ताला इससे लोगों को नफा पहुंचाता है, लोग इससे पीते हैं और खेतों को सैराब करते हैं, और इसी तरह कोई टुकड़ा ऐसा होता है जो ना तो नबातात उगाता है ना पानी रोकता है, बल्कि महज चटियल मैदान होता है। बस हम बारिश बरसाने वाले बन जाएं, बहुत सी जमीनें जरखेज हैं, खुद अपनी जमीन हमारी बड़ी जरखेज है, नेकी को बाहर निकालें, ये अल्लाह का कलाम पढ़ेगी समझेगी तो नेकियां करेगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमें अपने लिए भी और लोगों के लिए भी फल फूल निकालने वाला बनाए। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा है बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, मैं तुम्हारे हक में एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम सरी गुमराही में मुबतला हो। देखें, बिगड़ा हुआ तबका आम तौर पर इलीट क्लास बिगड़ी हुई होती है, और लीडरों की इलीट क्लास की खराबी और उनका बिगाड़ पूरी कौम को बिगाड़ में ले डूबता है। अल्लाह हमें सालेह हुक्मरान अता फरमाए। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा है बरादराने कौम, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। पैगम्बर अपनी कौम के खैर ख्वाह होते हैं, हमें भी खैर ख्वाही करनी है, अल्लाह हमें नबी का साथ देने वाला बना दे। और मुझे अल्लाह की तरफ से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आ गई ताकि तुम्हें खबरदार करे और तुम गलत रवि से बच जाओ और तुम पर रहम किया जाए, मगर उन्होंने इसको झुटला दिया, आखिरकार हमने इसे और इसके साथियों को एक कश्ती में निजात दी। अल्लाह हमें भी निजात पाने वालों में शामिल कर दे और उन लोगों को डबो दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया, यकीनन वो अंधे लोग थे, क्या उनको नजर नहीं आता था, नाबीना थे, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। दिल का नूर कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, ये दिल के अंधे लोग हैं, अल्लाह हमारे दिलों को बसीरत अता फरमाए। और आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, कौमे आद जो है ये अरब की बहुत पुरानी कौम थी, इसके अफसाने अरब के लोगों में जुबान जदे आम थे, बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ था, इनकी शानो शौकत भी जरबुल मिसल थी और फिर इनका नामो निशान मिट जाना भी जरबुल मिसल बन के रह गया था। तो अल्लाह ताला हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तذکرہ करते हैं कि उसने कहा है बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, फिर क्या तुम गलत रवि से परहेज ना करोगे। आप देखें, ये जो नबुवत की ट्रेन है, इसकी पहली बोगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तो आखिरी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन पटड़ी एक ही है कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। उसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ऐ बरादराने कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। आप उनकी बात सुनिए, कैसे कैसे इल्जाम दे रहे हैं, और नबी की शान देखिए कि दुख उठाते हैं, ताने सुनते हैं, लेकिन फिर भी उम्मत की इस्लाह की फिक्र है, अपनी जात को पीछे करके उम्मत की खैरख्वाही करते हैं। फरमाते हैं, तुमको अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारा ऐसा खैर ख्वाह हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें खबरदार करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद तुमको उसका जानशीन बनाया और तुम्हें खूब तनोमंद किया, इतनी नेमतें दी। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें? सबसे मुश्किल बात कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत, कोई ग्लैमर नहीं, कोई मेले ठेले नहीं, कोई रौनक नहीं, बस एक अल्लाह की इबादत करें। था जो ना खूब, बतदरीज वही खूब हुआ। अल्लाह अकबर। और उन्हें छोड़ दे जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई, उसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं? यानी ये नाम कौन से हैं? किसी को बारिश का, किसी को हवा का, किसी को दौलत का, किसी को बीमारी का रब कहते हो, हालांकि इनमें से कोई भी फिल हकीकत किसी चीज का रब नहीं। और इसकी मिसालें हमें इस जमाने में भी मिलती हैं, किसी को लोग मुश्किल कुशा कहते हैं, हालांकि मुश्किल कुशाई की कोई ताकत उसी के पास नहीं। किसी को गंज बख्श के नाम से पुकारते हैं, हालांकि उसके पास कोई गंज नहीं कि किसी को बख्शे। किसी के लिए दाता का लफ्ज बोलते हैं, हालांकि वो किसी शय का मालिक ही नहीं कि दाता बन सके। किसी को गरीब नवाज के नाम से मौसूम कर दिया, हालांकि वो गरीब उस इकतदार में कोई हिस्सा नहीं रखता जिसकी बिना पर वो किसी गरीब को नवाज सके। किसी को गौस कह दिया, फरियाद रस, हालांकि वो कोई जोर नहीं रखता कि किसी फरियाद को पहुंच सके। बस दर हकीकत ऐसे सब नाम महज नाम ही है, इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। जो इनके लिए झगड़ता है वो दरअसल चंद नामों के लिए झगड़ता है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है। अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। आखिरकार हमने अपनी मेहरबानी से हूद और इसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयात को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले ना थे। कैसे अल्लाह ने जड़ काटी? हवा फेर दी उनके ऊपर, 8 दिन 7 रातें मुसलसल हवा चली। फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, कि तुम देखो उस कौम को कैसे वो पछड़ी पड़ी हुई थी। हवा जो जिंदगी का सबब है, मौत का सबब बन गई। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सोलेह को भेजा। उसने कहा, है बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं। एक अल्लाह की बंदगी और सिर्फ एक ही अल्लाह की बंदगी, वो बुनियादी नुक्ता है कि तमाम अंबिया अपनी कौमों को इसी नुक्ते की दावत देते रहे। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली दलील आ गई, अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। कुरान से पता चलता है कि समूद वालों ने खुद एक ऐसी निशानी का हजरत सोलह से मुतालबा किया था और इसी के जवाब में हजरत सोलह ने ऊँटनी को पेश किया था। इससे ये बात तो कतई तौर पर साबित हो जाती है कि ऊँटनी का जहूर मौजे के तौर पर हुआ था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिहाजा इसे छोड़ दो कि खुदा की जमीन में चरती फिरे, इसको किसी बुरे इरादे से हाथ ना लगाना वरना एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने कौमे आद के बाद तुम्हें इसका जानशीन बनाया और तुमको जमीन में ये मंजिलत बख्शी। आज तुम उसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो और उसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। बस इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और जमीन में फसाद बर्पा ना करो। पहली चीज तो आप देखें कि उन्होंने ऊँटनी मांगी और अब वही ऊँटनी उनके लिए आजमाइश बन गई। इंसान बाज़ औक़ात किसी चीज की तमन्ना करता है, फिर वही चीज उसके लिए आजमाइश बन जाती है। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कौमे आद की सरकशी के बाद उसी जगह कौमे समूद ने आलीशान महलात बनाए, अल्लाह का अजाब भूलकर, आखरत से बेनियाज होकर, दुनिया ही को बनाने और चमकाने में लगे रहे। और तीसरी चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, क्योंकि अकीदा जब बिगड़ता है तो अमल भी बिगड़ता है। जब अकीदा बिगड़ता है तो जमीन में फसाद बर्पा होता है। उसकी कौम के सरदारों ने, जो बड़े बने हुए थे कमजोर तबके के, उन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा, क्या वाकई तुम ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? आप देखें, यहाँ पर अहले ईमान को शक में मुब्तला करने के लिए सवाल किया जा रहा है। झूठा प्रोपेगंडा, और झूठे प्रोपेगंडे में कौन आता है? जिनका ईमान कमजोर हो, जिनके पास इल्म की कमी हो। अपने ईमान और इल्म को मजबूत बनाने की जरूरत है, वरना शयातीन के प्रोपेगंडे, शयातीन दोस्त इंसानों के प्रोपेगंडे आज भी इस्लाम के खिलाफ जारी हैं। उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है हम उसे मानते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा यकीन दे दे। उन बड़ाई के मुद्दईयों ने कहा, जिस चीज को तुमने माना है हम इसके मुनकिर हैं। यानी पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा करके तोड़ने की कोशिश की अहले ईमान को, जब अहले ईमान डटे रहे, तो अब ये दूसरा हरबा है, हम तो नहीं मानते, हम तो इसे ठीक नहीं समझते, हम तो इसका इनकार करते हैं। गोया फिर दोबारा डाउन करने की कोशिश की है, उन्हें अपने अकीदे से तोड़ने की कोशिश की है, कि चूंकि हम नहीं मानते, इसलिए कि इसमें कोई शायद खराबी ही है। मजबूत ईमान और पुख्ता इल्म कितना जरूरी है। फिर उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला और पूरे तमर्रुद के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे, और साले से कह दिया कि ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई पैगम्बरों में से है। आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया, और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े के पड़े रह गए। एक शख्स ने ऊंटनी को मारा, लेकिन चूंकि पूरी कौम उसकी पुश्तपनाही कर रही थी, पूरी कौम की मर्जी उस काम में शामिल थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके अजाब में पूरी कौम को लपेट में ले लिया। तो ये बहुत फिक्र की बात है। अगर कोई एक फर्द गुनाह करता है हमारी फैमिली में, खानदान में, कौम में, और अगर कौम और हम लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो अपने आप को भी बचा लेते हैं और बुराई के आगे बंद भी बांध लेते हैं। लेकिन अगर रोकने के लिए खड़े नहीं होते, मना नहीं करते, तो अगर अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह के अजाब में फिर सारे ही लपेट में आ जाते हैं। साले ये कहता हुआ बस्तियों से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुंचा दिया, मैंने तेरी बहुत खैरख्वाही की, मगर मैं क्या करूं कि तुझे अपने खैरख्वाह पसंद ही नहीं। नबी को अपनी कौम से ऐसे ही प्यार होता है जैसे बाप को अपनी औलाद से। नबी का दर्द महसूस करें, कितनी मोहब्बत, कितनी खैरख्वाही। अल्लाह हमें अपने नबी की मोहब्बत का, उनकी खैरख्वाही का, उनकी तड़प का हक अदा करने की तौफीक दे। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा, फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फोहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? इन्होंने ये नई बुराई ईजाद की, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। जैसे शिर्क का आगाज नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुआ, वैसे ही इस खुली बेहयाई का आगाज लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने शुरू किया। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो, मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था, निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं। अल्लाह अकबर, ये लोग इतने बेहया हो गए थे, इतने खराब हो गए थे, कि अपने अंदर चंद नेक और पाकीजा सिफत इंसानों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों अल्लाह फिर रखता इनको बाकी इस दुनिया पे? सड़े हुए फलों के टोकरे में जब तक चंद अच्छे फल मौजूद हों, उस वक्त तक तो टोकरे में रखा जा सकता है, मगर जब वो फल भी इसमें से निकल जाएं, तो फिर इस टोकरे का कोई मसरफ इसके सिवा नहीं रहता कि उसे किसी गम की टोकरी में डाल दिया जाए। जब वो नेक लोग निकल गए, तो पीछे अब वो सारा कचरा रह गया जिससे अल्लाह ने अपनी दुनिया को पाक कर दिया। आखिरकार हमने लूत और इसके घर वालों को, बजुज उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, बचा कर निकाल दिया, और इस कौम पर बरसाई एक बारिश। फिर देखो कि इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी क्यों पीछे रह गई? बीवी क्यों ना बची? अल्लाह के यहाँ मेरिट की पासदारी है। हर फर्द अपने अमाल का खुद जवाबदेह और जिम्मेदार है। हर फर्द को अपना पर्चा खुद हल करना है और अपना नतीजा खुद भुगतना है, ख्वा वो नबी जैसी वीवीआईपी हस्ती के घराने में क्यों ना हो। बीवी की हमदर्दियां अपनी कौम के साथ थीं। वो बुरी नहीं थी, बदकिरदार नहीं थी, उसकी हमदर्दियां उसे ले डूबी। तो सिर्फ बुरा होना काफी नहीं है, अगर सिर्फ हमदर्दियां भी बुरे लोगों के साथ हों तो वो भी ले डूबती हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने फितरत को उल्टाया, अल्लाह ने उन्हें उठाकर उल्टाकर पटखा, और कौन सी बारिश बरसी, पानी की नहीं पत्थरों की बारिश। अल्लाह अकबर। और मदियन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा, उसने कहा है बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो, लोगों को उनकी चीजों में घाटा ना दो और जमीन में फसाद बरपा ना करो। पैगंबर की दावत, दीन के बुनियादी नकात, दीन सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, ये तो पिलर्स हैं, इसके ऊपर इस्लाम की पूरी इमारत होती है जिसे मुझे और आपको तामीर करना है। दीन सिर्फ हुलिये का नाम नहीं है, दीन बिजनेस भी है, जॉब भी है, कल्चर भी है, तालीम भी है, अदालत भी दीन है, जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है, इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो और जिंदगी के हर रास्ते पर रहजन बनकर ना बैठ जाओ कि लोगों को खौफजदा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो जमाना जब तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। अगर तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.